الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، یہ رمضان المبارک سے پہلے ہماری آخری مجلس ہوگی، کیونکہ اگلے اتوار کو بظاہر سفر درپیش ہے اور اس سے اگلا اتوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ رمضان میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکات سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مستفید فرمائے. اس لیے خیال آیا کہ رمضان المبارک کے استقبال یا تیاری سے متعلق کچھ گزارشات اپنی تذکیر کے لیے پیش کر دی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مہینے کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق. ہمارے ہاں کچھ ایسی ریت پڑ گئی ہے کہ جو خالصتاً اللہ جل جلالہ کی عبادتیں ہیں ان میں بھی رسموں کو دخل دے دیا گیا ہے اور بہت سی رسمی کارروائیاں ان عبادتوں کے نام پر شروع کر دی جاتی ہیں جن سے اس کی اصل روح جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے. تو ہمارے عالم اسلام میں رمضان المبارک آنے سے پہلے کچھ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں استقبال رمضان کے عنوان سے، اور اس میں جلسہ ہو جاتا ہے، کچھ نظمیں وغیرہ پڑھ لی جاتی ہیں، کچھ کھانا پینا ہو جاتا ہے، کچھ اثرانہ عشائیہ ہو جاتا ہے اور اس کا نام استقبال رمضان رکھ دیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں نے استقبال رمضان کی مجلس جو ہے وہ مصر میں دی. مصر میں ایک بہت بڑا مجمع اسی نام سے منعقد ہوا تھا، جلسہ ہوا، تقریریں ہوئی، نظمیں وغیرہ پڑھی گئی اور کھانا پینا ہو گیا. اس کے بعد یہ عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی صدا سنائی دی جاتی ہے. تو ہے تو بڑی اچھی بات اور بڑی قابل تعریف، بڑا قابل تعریف جذبہ کہ اس مقدس مہینے کا استقبال کیا جائے، استقبال کیا جائے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے خطبات الاحکام میں रमजान से पहले का जो खुतबा है उसमें ये जुमला भी लिखा है कि फस्तक़बिलूहु बिश्शौक वलहैमान, कि रमजान का महीना आ रहा है उसका शौक से और उमंग के साथ इस्तकबाल करो। तो है तो बड़ी अच्छी बात, बशर्ते के वो इस्तकबाल खुद कोई रस्म न बन जाए कि खाया पिया उठे चले। और जैसे हमारे वाले वाजिद रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे कि शब कदर जो है लैलतुल कदर वो थी तो इस काम के लिए कि उस रात में बंदा अपने अल्लाह जल्ल जलालहू से ताल्लुक कायम करे और अल्लाह तबारक व तआला से रुजू हो और जितना हो सके गोशाए तन्हाई में इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे कि वो हो और उसका अल्लाह हो। असल तो लैलतुल कदर इस काम के लिए था। जब उसको एक रस्म बनाया गया तो उसमें चरागा आ गया, चरागा किया जा रहा है मस्जिदों में, इज्तिमाआत मुनक़िद हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, नज़में पढ़ी जा रही हैं, कव्वालियां हो रही हैं और खाने पक रहे हैं, देगे चढ़ रही हैं और सामान खाने पीने का इधर से उधर मुंतकिल किया जा रहा है, इसी में सारी रात गुजर गई। तो अल्लाह बचाए, जब किसी इबादत को शैतान बिगाड़ना चाहता है तो इस तरह की बातें, उन्वान अच्छा होता है लेकिन उसके पीछे उस इबादत की रूह को मफकूद कर देता है। तो ऐसा ही ये कुछ इस्तकबाल रमजान की जो रस्मी तकरीबात हैं उससे कोई खास हासिल नहीं, बल्कि खतरा है कि वो भी कोई बिदअत की शक्ल न इख्तियार कर जाए। असल इस्तकबाल ये है कि आदमी ये सोचे कि यह महीना जो आने वाला है ये अल्लाह जल्ला जलालहू का कितना बड़ा इनाम है और क्यों भेजा गया है और जिस मकसद के लिए भेजा गया है उस मकसद को हासिल करने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए अभी से। वो तैयारी और उसकी कदरदानी और पहले से उसके लिए अपने जहन को अपने निजाम अमल को तैयार करना, यह है हकीकत में इस्तकबाल, जिसको फरमाया हजरत वाला ने खुतबातुल अहकाम में फस्तक़बिलूहु बिश्शौक वलहैमान, के ज़ौक़ो शौक़ के साथ उमंग के साथ उसका इस्तकबाल करो। ऐसा इस्तकबाल कि नबी करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन महीने पहले, दो महीने पहले रजब का चांद देखकर फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। पहले से इश्तियाक है, पहले से इंतजार है और इश्तियाक के आलम में ये दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह हमारी उम्र इतनी कर दीजिए कि हम रमजान तक पहुंच जाएं, रमजान की साआतें हमें नसीब हो जाएं। यह है इस्तकबाल। तो इसके लिए जरूरी है कि जरा सा रमजान मुबारक की जो हकीकत है उस पर नजर डालकर उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करने की फिक्र की जाए। रमजान मुबारक क्या है? बज़ाहिर तो आम दिनों के मुकाबले में उसमें दो ही चीजें ज्यादा हैं, एक रोजा एक तरावी, यही दुनिया बुनियादी खसूसियत है रमजान की। इन्नल्लाह अफ़तरद अलैकुम क़ियामहु व सनंतु लकुम सियामहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रोजे फर्ज फरमाए हैं और मैंने उसके क़ियाम को तुम्हारे लिए सुन्नत करार दे दिया है, यानी तरावी की नमाज को। तो बुनियादी तौर पर तो बुनियादी जो इबादतें इस रात में आम दिनों के इन दिनों में आम दिनों से ज्यादा मुकर्रर की गई हैं वो रोजा और तरावी है। लेकिन अगर जरा गौर से देखा जाए और नजर गायर डाली जाए तो इस पूरे महीने को अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी सफाई का, तंकीय का, हमारी ओवरहॉलिंग का महीना बनाया है और एक तरबियत से गुजारा है इस महीने के अंदर हम सबको। और उसका मकसूद दरहकीकत यह है कि इस महीने के जरिए अल्लाह तबारक व ताला के साथ कुर्ब में इजाफा हो, अल्लाह तबारक व ताला के साथ ताल्लुक में इजाफा हो, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू में इजाफा हो और हमारे ऊपर जो मुख्तलिफ गंदगियां चिमट गई हैं साल भर में, वो गंदगियां जाहिरी हो या बातिनी हो, उन गंदगियों को इस जमाने के अंदर निकाला जाए और निकाल कर रमजान के गुजरने पर पाक साफ कर दिया जाए। और तफसील उसकी थोड़ी सी यह है कि यह तो हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के इस दुनिया में आने का बुनियादी मकसद जो बयान फरमाया है वो क्या है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मुझे मैंने जिन्नात को और इंसानों को इसी काम के लिए पैदा किया है, इल्ला लियाबुदून, हसर के साथ फरमाया कि सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी बंदगी करें, इबादत करें, मेरी इबादत करें। तो सारी जिंदगी का बुनियादी मकसद इबादत है। इंसान को भी इसीलिए पैदा किया, जिन्नात को भी इसलिए पैदा किया कि अल्लाह तबारक व ताला की वो इबादत करें जिंदगी में। यानी ये जो सिलसिला जारी है ना कि इंसान दुनिया में आता है, बच्चा होता है, जवान होता है, अधेड़ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, ये सिलसिला जारी है, कब से जारी है और कब तक जारी रहेगा, तो ये सब बता रहा है कि ये सारी जिंदगी जो कुछ भी हम गुजार रहे हैं ये कोई मंजिल नहीं है, ये कोई सफर है किसी मंजिल की तरफ, ये सफर है, ये कोई बजाते खुद जाए करार नहीं, ये बजाते खुद हमेशा रहने की जगह नहीं, ये बजाते खुद दिल लगाने की जगह नहीं, बल्कि ये सारा जो कुछ भी जिंदगी के लम्हात हमें मुयस्सर है ये एक सफर है जो चल रहा है। और ये बात भी हर समझदार आदमी के जहन में आनी चाहिए कि कोई सफर बेमकसद नहीं होता, हर सफर का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर आप यहां से लाहौर जाओ या रावलपिंडी जाओ या पिशावर जाओ तो कोई ना कोई मकसद जहन में होगा, कोई तिजारत के लिए जाएगा, कोई अपने अजीजों से मिलने के लिए जाएगा, कोई दोस्तों से मिलने के लिए जाएगा, कोई तलब इल्म के लिए जाएगा, कोई सैर सियाहत के लिए जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मकसद तो होगा। ऐसा तो कोई दुनिया में पागल ही होगा कि चल खड़ा हो और उसका कोई मकसद ना हो, चल खड़ा हुआ उसको कोई क्यों जा रहा है किसी पता नहीं, तो ये हमाकत होगी, पागलपन होगा कि आदमी बिना मकसद चल खड़ा हो। तो ये हमारी जिंदगी का जो सफर है जो हर आन तय हो रहा है और न जाने किस वक्त खत्म हो जाए, उसका मकसद बुनियादी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया कि तुम्हारे इस सफर का मकसद है बंदगी, इबादत, मेरी इबादत करना, इसलिए पैदा किया हमने तुम। तो उसका तकाजा तो यह था कि हमारे साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे हर वक्त हम इबादत ही में मशगूल रहते, कोई और काम करने की इजाजत ना होती, क्योंकि मकसद ही है जिंदगी का لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسا نظام ہم کمزوروں کے لیے بنا دیا کہ بنایا تو تھا عبادت کے لیے، لیکن عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت کو کے ساتھ ہماری جو ضروریات لگی ہوئی ہیں زندگی کی، کھانے کی، پینے کی، کمانے کی، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی، ہنسنے بولنے کی، ان تمام ضروریات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جائز قرار دے دیا کہ چلو جب تمہارے ساتھ ہم نے یہ حاجتیں پیدا کی ہیں تو ان حاجتوں کو پورا کرنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ایسا کیا کہ ان جائز حاجتوں کو بھی اخلاص کی برکت سے، نیت کی درستی کی برکت سے فرما دیا کہ ان کو بھی ہم تمہارے لیے عبادتوں میں لکھ دیں گے اگر نیت صحیح کر لی، تو ان کو بھی عبادتوں میں لکھ دیں گے، یہ بھی عبادت قرار پا جائیں گے۔ یعنی دیکھو عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عبادت وہ ہے جو جس کوئی ایسا عمل ہے جس کا کوئی مقصد سوائے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عبدیت کے اظہار کے کوئی اور مقصد اس کا ہے ہی نہیں، جیسے نماز، نماز کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، غایت التذلل جس کو کہتے ہیں، وہ اسی کام کے لیے ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں، یہ عبادت براہ راست عبادت ہے۔ روزہ ہے، اس کا مقصد سوائے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کے کوئی اور مقصد نہیں، وہ وضع ہی اس کام کے لیے ہو جائے۔ عمرہ ہے، حج ہے، یہ سارے کے سارے عبادتیں ہیں، کیسی کہ ان کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بندہ بنا کر اپنی عاجزی کا، غایت تذلل کا اظہار کرے، کیا جائے، اس کے سوا کوئی اور اس کا مقصد نہیں، یہ وہ ہے، یہ ہے اصل عبادت۔ اور اس کو کہنا چاہیے کہ اصلی حقیقی معنی میں عبادت ہے، اصل عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے۔ تو اصل بات تو یہ تھی کہ جب بندگی کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو سارا صبح سے لے کے شام تک آدمی اسی قسم کی افعال میں مشغول رہے، سجدے میں پڑا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، نمازیں پڑھے، تسبیح کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، اور کوئی کام نہ کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس عبادت کے ساتھ ہم نے جو تمہاری ضروریات ہے نا، تمہاری حاجات، اس کو بھی اگر تم صحیح نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق شریعت کے دائرے میں کرو گے تو ہم اس کو بھی تمہارے لیے عبادت لکھ دیں گے۔ مثلا بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے تو اگر ہمارا نام لے کر کھاؤ گے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ گے، اگر سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دانے ہاتھ سے کھاؤ گے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہو گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، تو ہم اس کو بھی تمہارے لیے عبادت قرار دے دیں گے۔ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھا کر شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے کہ روزہ رکھ کر صبر کرے، جو روزہ رکھ کر صبر کرنے میں ثواب، وہی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے میں ثواب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کھانے کو بھی عبادت بنا دی۔ یا روزی کمانے کے جتنے طریقے ہیں، تجارت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، زراعت ہو، وہ سارے کے سارے بھی جائز قرار دے دیے کہ ہاں بھائی تمہارے بھوک پیاس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آمدنی کی بھی ضرورت ہے، تو یہ سب تمہارے لیے جائز کر دیا۔ اور نہ صرف جائز کر دیے بلکہ یہ فرما دیا کہ اگر یہ سارے کام تم सही नियत से करो, कस्बे हलाल की नियत से करो और अपना नफ्स का हक अदा करने की नियत से करो, अपने अहल अयाल का हक अदा करने की नियत से करो, सुन्नत के मुताबिक अंजाम दो, शरीयत के दायरे में रहकर करो, हलाल और हराम की फिक्र करते हुए करो, तो ये सारी तिजारत भी, ज़राअत भी, मुलाजमत भी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए इबादत लिख दी गई। चुनांचे फरमाया कि तलबुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, हलल हलाल की तलब करना ये भी फराइज के बाद दूसरे किस्म का, दूसरे नंबर का ये भी फरीज़ा है। इसके ऊपर क्या फरमाया, ये फरमाया कि अत्ताजिर सदूकुल अमीन महान नबीजीन व सिद्दीकीन व शहादा, कि जो सच, जो ताजिर सच्चाई के साथ तिजारत कर रहा हो, अमानत के साथ तिजारत कर रहा हो, तो वो आखिरत में अंबिया और शहादा और सालेहीन के साथ होगा। इतना बड़ा दर्जा दे दिया, तो उसको भी इबादत करार दे दिया। तो असल में तो ये इबादत नहीं थी, ये तो हमारे पेट पालने का जरिया थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से तसहीह नीयत की बदौलत और इत्तबाए सुन्नत की बदौलत और इत्तबाए शरीयत की बदौलत इन सब चीजों को भी इबादत में शुमार कर लिया। और क्या दिया, जाओ तिजारत भी करो, ज़राअत भी करो और मुलाजमत भी करो, मजदूरी भी करो, पैसे भी कमाओ और खाओ पकाओ, ये जायज है तुम्हारे लिए। लेकिन होता क्या है कि जब इन हजरत इंसान को ये सब इजाजत मिली, खुली छुट्टी कि वे तिजारत भी कर रहा है, ज़राअत भी कर रहा है, मुलाजमत भी कर रहा है और मजदूरी भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, तो अब दिलो दिमाग उस तरफ चल पड़ा, दिलो दिमाग लग गया, तिजारत में लग गया, उसमें मुनहमिक है, सुबह से शाम तक ये फिक्र है कि पैसे कैसे कमाऊं, कितना ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, अपनी जो नफा हो रहा है उसको किस तरह बढ़ाऊं। तो अब सोच का रुख जो है वो बराह रास्त इबादतों से फिरकर इस दुनिया के कामों की तरफ लग गया और उसमें बाद औकात इन्हमाक हो गया। इन्हमाक इतना हो गया कि अब सुबह से शाम तक वही फिक्र है, वही सोच है, अल्लाह तबारक व तआला का ख्याल कम आता है और पैसों का ख्याल ज्यादा आता है, आमदनी का ख्याल ज्यादा आता है, अपने जो हाजात बशरिया हैं उनकी फिक्र ज्यादा है, आखिरत में जाकर क्या होगा, मरने के बाद क्या हालात पेश आएंगे, उसकी फिक्र कम है और इस तरफ आदमी ज्यादा लगा हुआ। हदीस में आता है कि एक साहब थे, साहबी थे, बेचारे तंगदस्ती का शिकार थे, फक्र और इफलास का शिकार थे, तो हुजूर नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरे लिए वो दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे वसअत अता फरमा दे, दूसरों के पास माल मवेशी बहुत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी माल मवेशी दे दे, मेरे पास भी माल दौलत हो जाए। आपने दुआ फरमा दी, अब हो गए माल मवेशी। उस जमाने में दौलत जो होती थी ना, उस जमाने में दौलत ज्यादातर ये मवेशी हुआ करते थे, ऊंट गायें बकरियां, ये जिसके पास ज्यादा होते हैं बड़ा दौलतमंद समझा जाता था। तो इनके पास भी हो गए, बकरियां हो गई, गायें हो गई, ऊंट हो गए। तो अब क्या हुआ, अब उनकी देखभाल में, ऊंट गायों बकरियों की देखभाल में इतने लगे कि अब सुबह से शाम तक उसी में मसरूफ है। तो अब मस्जिद नबवी में आया करते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो मसरूफियत की वजह से नमाजें जमातें छूटने लगी, मस्जिद में नहीं आना मुश्किल हो गया, इसलिए कि मसरूफियत उसमें रहती। फिर कुछ दिन के बाद वो और ज्यादा बढ़ गया माल, तो मदीना मुनव्वरा में जहां बाड़ा बनाया हुआ था वो काफी ना रहा, तो मदीना मुनव्वरा से बाहर जाकर कहीं जंगल में बड़ा बाड़ा बनाया, वहां पर ले गए। अब जब वहां दूर चले गए तो फिर तो मस्जिद में आना और ज्यादा मुश्किल हो गया, मस्जिद जमात फिर छूटने लगे। और ज्यादा बड़ा मामला तो हुआ करता था कि भाई दो तीन दिन में आ जाते थे मस्जिद नबवी में हुजूर अकदस रसूल के पीछे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन फिर वो दो तीन दिन के बाद अनमाना भी छूट गया, जुमा को आ जाया करते थे, फिर जुमा आना भी छूट गया, अल्लाह बचाए। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के पास भेजे, लोगों के पास ज़कात वसूल करने के लिए आमिल जाया करते थे, उनके पास ज़कात वसूल करने आया कि तुम्हारे पास इतना माल मवेशी है ज़कात अदा करो। तो उन्हें कहा मैं कोई काफिर हूं जो मुझसे टैक्स लेते हो, यानी ज़कात देने से इनकार कर दिया, अल्लाह बचाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने ये जुमला फरमाया कि वमा यनकिम इब्न जमील इल्ला कान फकीरन फअग्नाहु अल्लाह व रसूल। इब्न जमील नाम था उनका, कि इब्न जमील जो है ये बदला सिर्फ इस बात का दे रहे हैं कि ये फकीर थे, अल्लाह ने इनको गनी कर दिया, दौलत अता फरमा दी। तो अब उसका बदला बजाय इसके कि शुक्र अदा करते, उसके बजाय इन्होंने नमाजें छोड़ दी और अल्लाह बचाए फिर ज़कात अदा करनी छोड़ दी, अल्लाह ताला महफूज रखे। अब ये यहां तक के फिर बाद में ये हुआ इसका सिला के बाद में ये खुद ज़कात देने जाते भी थे हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, तो फारूक आजम लेने से इनकार करते थे कि तुम्हें तुम्हारी तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात नहीं दी तो मैं भी नहीं लूंगा तुमसे, अल्लाह बिल्लाह अली। तो बाद औकात इंतहा इतनी पहुंच जाती है, इतनी इंतहा पहुंच जाती है उसके इन्हमाक में कि आदमी फराइज से भी काफिल हो जाता है अल्लाह बचाए, और बाद औकात ईमान तक से हाथ धो बैठता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हिकायत वाकया ये भी मरवी है कि बिश्ती ज़बर में भी लिखा हुआ है कि एक शख्स था वो गंजा था, उसके बाल नहीं थे, और एक अंधा था और एक अवरस था, यानी उसको कोढ़ी का बरस था। अल्लाह तबारक वतआला ने उनको आजमाने के लिए फरिश्ते भेजे, एक फरिश्ता भेजा, फरिश्ता भेजकर उससे अबरस से कहा कि भाई ये बताओ कि तुम्हें सारी दुनिया में क्या चीज ज्यादा पसंद है, क्या चीज महबूब है। तो कोड़ी ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद यह है कि खाल अच्छी हो जाए इंसान की, खाल हो, अच्छी खाल हो, अच्छा रंग हो, क्योंकि इस कोड़ की वजह से लोग मुझसे घिन करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी खाल दुरुस्त कर दे, मुझे अच्छा रंग दे दे तो ये बहुत। तो उसने कहा कि अच्छा चलो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हम अल्लाह ताला की हुक्म से मैं तुम्हें हाथ फेरता हूं कि तुम्हारा सारा कोड़ चला जाएगा, चला गया। फिर पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा बेहतरीन अच्छा बाल तुम्हारी नजर में क्या है, तो उसने कहा जी ऊंट हो, ऊंट जमाने में ऊंट को बहुत बड़ी दौलत होता है, कहा कि जितने भी ऊंट हो, तो उनको ऊंट भी आता हो गए और ऊंटों ने ऊंटनियों ने बच्चे दिए और ऊंट बने, यहां तक के पूरा कबीला ऊंटों का उसको हासिल हो गया। दूसरा शख्स जो गंजा था उससे पूछा भाई तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, उसने कहा जी बाल अच्छे हो, और लोग जो है मुझे गंजा समझकर मुझे आखिर समझते हैं, बाल अच्छे हों तो मुझे इससे अच्छी कोई और नेमत नहीं है। उसके बाल भी फरिश्ते ने हाथ फेरा और बाल भी उसको मिल गए। फिर पूछा तुझे कौन सी दौलत ज्यादा पसंद है, उसने कहा जी गाय हो, तो उसको गाय मिल गई, गाय का कबीला आबाद हो गया। फिर अंधे के पास गया कि भाई तुझे क्या पसंद है सबसे ज्यादा, उसने कहा जी मुझे तो यह है कि मेरी बिनाई आ जाए और मुझे देखने को मिल जाए, मैं कुछ देख नहीं सकता है इस कायनात में। तो उसने हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई बहाल फरमा दी, बिनाई दे दी। पूछा तुझे और क्या पसंद है? उसने कहा मेरे पास बकरियां हो जाए बहुत शानदार, तो बकरियों का एक रेवड़ मिल जाए तो बस ये मेरी जिंदगी के लिए बेहतरीन चीज है। अल्लाह ताला ने वो बकरियां भी दे दी। अब उसने उसके ऊंटों ने ऊंटियों ने जन जन के पूरा कबीला आबाद कर दिया, ऊंटों का बहुत बड़ा रेवड़ हो गया, इसकी गायें बहुत सारी हो गई, इसकी बकरियां बहुत सारी हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी फरिश्ते को एक फकीर की के भेस में भेजा और उसने जाकर उस कोड़ी के पास, जो कोड़ी था और बहुत सारे ऊंट और उसके हो गए थे, उसके पास जाके आवाज लगाई कि भाई मैं फकीर आदमी हूं और मुसाफिर हूं और मेरे पास जो सवारी थी वो खत्म हो गई, तो मैं ला बलागल इल्ला बिक, अल्लाह अब और कोई रास्ता नहीं है कि अल्लाह तबारक बता रहा कोई मुझे रास्ता पैदा फरमा दे, या तुम मुझे कोई ऊंट दे दो, एक ऊंट जिस पर मैं सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो वो कहता है जवाब में कि मेरे ऊपर तो बड़े हुकूक हैं, मैं ऊंट तुम्हें नहीं दे सकता इस वास्ते कि मेरे ऊपर तो बड़े हुकूक हैं और उन हुकूक की अदायगी की वजह से मुझे ये सारे रखने पड़ेंगे, कोई देने का मेरे पास इम्कान नहीं है। तो उसने कहा मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि तुम कोड़ी थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें, तुम्हारा कोड़ अच्छा किया और ये सारे ऊंट अल्लाह ताला ने तुम्हें अता फरमाए और फिर आज तुम ये इनकार कर रहे हो। तो उसने कहा लकद वरिस्तुहा काबिरन अन काबिर, मैं तो मेरे आबा अजदाद से मुझे विरासत में मिले हैं सारे ऊंट। तो उस वो फरिश्ता ने कहा कि अगर तू झूठ कहता है तो अल्लाह ताला तुझे फिर उसी हालत पर भेज दे जिस हालत पर तू इब्तिदा में था। चुनाचे फिर उसको उसी हालत पर तब्दील कर दिया गया। गाय वाले के पास गया, उसने भी इसी किस्म की बात कही। बकरी वाले के पास गया तो उसने उससे कहा कि भाई मैं इस तरह रास्ते में भटक गया हूं और घर पहुंचना चाहता हूं, कोई और वसीला नहीं है, तो कुछ मुझे कोई बकरी दे दो, उसके दूध वूध पीऊंगा। तो वो जवाब में कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है, मैं तो अंधा था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बिनाई अता फरमाई और ये सारी बकरियों की दौलत मुझे अता फरमाई, मैं तो इनमें से किसी चीज का मुस्तहिक नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल व करम से अता फरमाया है, आज तुम मेरे पास मोहताज बनकर आए हो, ये सारा बकरियों का रेवड़ तुम्हारे सामने है, जो चाहो ले जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके उसकी इस बात को, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस कौल की वजह से उसको गिना भी अता फरमाया और उसके अजर सवाब का भी मुस्तहिक बनाया, वो कामयाब हो गया। तुम चाहे ये जो वाकया बयान फरमाया नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वाकया ये बताने के लिए कि ये दुनिया का काम ऐसा है जिसमें पैसे आ रहे हो ना, दौलत आ रही हो, दौलत मिल रही हो और आदमी के पास दौलत के जखीरे इकट्ठे हो रहे हो, तो ये ऐसी चीज है जो बाद औकात इंसान को गाफिल बनाकर अल्लाह तबारक व तआला से दूर ले जाती है, अल्लाह बचाए बाद औकात ईमान तक से महरूम कर देती है अगर आदमी इसमें ज्यादा मुनहमिक हो जाए। तो अगर ईमान से भी महरूम ना करे तो कम से कम अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो ताल्लुक होना चाहिए था, अल्लाह तबारक व तआला का जो कुर्ब हासिल होना चाहिए था, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का जो जज्बा होना चाहिए था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाता है क्योंकि दिलो दिमाग पर पैसा ही चक्कर काटता रहता है और दुनिया के वसाइल, दुनिया के असबाब, दुनिया की राहतें, दुनिया की लज्जतें, इसी में इंसान मुनहमिक हो जाए। इसीलिए नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी है और यह हम सबको मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सब के हक में कबूल फरमा ले कि اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا। قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے اوپر کہ اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا, اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا बड़ी फिक्र हमारी दुनिया को ना बनाइए कि सबसे बड़ी फिक्र हमें दुनिया की हो कि किसी तरह दुनिया ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। अल्लाह दुनिया अकबर हम में ना वला मबलगा इल्म ना, और अल्लाह ऐसा भी ना हो कि हमारे इल्म की सारी रसाई इंतहा जो है वो दुनिया ही पर हो, जो कुछ इल्म है वो दुनिया का इल्म है और आखिरत की कुछ फिक्र नहीं। वला गायत रगबत ना, और ऐसा भी ना हो कि हमारी सारी रगबतों का मरकज, सारे शौक का मरकज, उमंगों का मरकज ये दुनिया होकर रह जाए कि ऐसा मेरा मकान हो, ऐसे मेरी गाड़ी हो, ऐसा मेरा मेरी मुझे ऐसी ऐसी लज्जतें हासिल हो, सारी रगबतें हमारी वो दुनिया के अंदर मुनहमिक होकर ना रह जाए। सबको दुआ मांगनी चाहिए ये, अल्लाहुम्मा या तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलगा इल्मिना वला गायता रगबतिना, क्या अल्लाह हमें इसका शौक इतना ना हो कि बस हर वक्त दिलो दिमाग पर यही सवार हो। तो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तरबियत साहबा किराम की इस तरह फरमाई थी। ये इक्का दुक्का मिसालें जो मैंने इब्न जमील वाली थी, 12 मुनाफिकीन भी पाए जाते थे मदीना मुनव्वरा के अंदर, लेकिन साहबा किराम की बहजत मजमू जो तरबियत फरमाई थी सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ये थी कि दुनिया जरूर जरूरत के मुताबिक ली, लेकिन दिल दुनिया में अटका हुआ नहीं है, दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे है, दिल आखिरत की रगबतों में खोया हुआ है। जैसे आजकल किसी को अगर एकदम से इनाम पता चल जाए कि भाई उसको तो 1 करोड़ रुपया इनाम मिला है, वो जैसे फड़क उठता है कि जैसे उसको जन्नत मिल गई। साहबे किराम क्या इस दुनिया की कोई कदर कीमत नहीं थी, उनके यहां ये थी कि खून का फव्वारा सीने से उबला और शहादत सामने आई तो बेसाख्ता कलिमा जो जुबान पर जारी हुआ है कि लकद फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम में कामयाब हो गया, क्योंकि आंखों से जन्नत नजर आ रही है, इस वास्ते फुस्तु व रब्बिल काबा। और उहद के अंदर मुसलमान शहीद हो रहे हैं और कुफार का हमला हो रहा है, गलबा नजर आ रहा है, तो साहब ही कहते हैं कि मुझे इस उहद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। तो उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनकी लगन, उनकी उमंग वो इस तरफ थी कि किस तरह हमारी आखिरत ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो जाए। दुनिया की जो फिक्र थी, दुनिया का जो शौक था वो बकदरे जरूरत था। दुनिया में हूं, दुनिया का खरीदार नहीं हूं, हजरत मजदूर साहब तआला फरमाते हैं, दुनिया में हूं, दुनिया का खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। तो इस तरह जिंदगी गुजारी हजरत साहब किराम रज़ियल्लाहु तआला। कोई सहाबी किसी को बता दे कि फला अमल में इतना सवाब है तो उसकी तरफ दौड़ते, उसकी तरफ लपकते। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर को पता चला, पहले हदीस नहीं मालूम थी, पहले पता चला कि नमाज जनाजा पढ़ने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि नमाज जनाजा कोई शख्स अदा करे तो उसको एक किरात अजर मिलता है, एक किरात। और दूसरी रिवायतों में फरमाया कि किरात जो उहद के पहाड़ के बराबर है इतना अजर मिलता है, और अगर साथ भी जाए तो 2 किरात और दफन में भी शरीक हो तो 3 किरात। तो हज़रत उमर को जब यह हदीस पता चली, पहले मालूम नहीं थी, तो एकदम से बेसाख्ता जो जुमला जबान पर आया वो ये कि हाय हमने तो बहुत सारे किरात जाये कर दिए। क्या माना, इससे पहले हदीस नहीं सुनी थी, लिहाजा नमाज जनाजा पढ़ने का, जनाजे के साथ जाने का इतना एहतमाम नहीं था, तो कितने किरात हमने जाये कर दिए। हसरत इस बात पर हो रही है कि आखिरत का ये अजर हमने कैसे फौत कर दिया, हालांकि पता नहीं कितने ढेर लगा रखे थे नेकी होंगे, लेकिन ये जो चंद किरात छूट गए उस पर हसरत है। तो फिक्र और सोच का रुख जो है वो नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के असबाब और दुनिया के अमवाल और दुनिया की राहतों और दुनिया की लज्जतों से मोड़कर आखिरत की तरफ कर दिया था। लेकिन हम जैसे लोग जब दुनिया में दाखिल होते हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अच्छा अच्छा अल्लाह करने खाने को दे रखा है, अच्छी जगह रहने के लिए दे रखी है, आमदनी के जराए हैं, असबाब हैं, वसाइल हैं, तो दिल और दिमाग उसी में फंस गया। अब फिक्र है तो इसकी है जब तिजारत कैसे बढ़े, फिक्र है तो इसकी है कि आमदनी में कैसे इजाफा हो, फिक्र है तो इसकी है, शौक है तो इसका है कि आज मेरे पास इतना है तो कल इतना हो जाए, और मकान मेरा ऐसा है तो इससे और अच्छा हो जाए, सवारी मेरी ऐसी है तो और ज्यादा बेहतर बन जाए। इन फिक्रों में दिन रात गुजर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से जिन कामों को हमारे लिए हलाल और जायज कर दिया था, बल्कि हुस्न नीयत की बरकत से उनको इबादत बना दिया था, वो हमारी गफलत की वजह से वो हमें अल्लाह ताला से दूर ले जा रहे हैं, हमारी गफलत की वजह से, इन्हमाक की वजह से वो दूर ले जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हर साल ये एक महीना भेजते हैं, अरे कहां भटके जा रहे हो, आओ लौट कर। इस एक महीना भेजने का मकसद क्या है कि ये जो तुम 11 महीने की तुम्हारी मसरूफियात ने तुमको हमसे दूर कर दिया है, हमारे साथ ताल्लुक को कमजोर कर दिया है, आखिरत की फिक्र को मغلوب कर दिया है, दुनिया की फिक्र को गालिब कर दिया है, तुम्हारी सोच का, तुम्हारे शौक का, तुम्हारी उमंग का, तुम्हारी लगन का मरकज किसी और चीज को बना दिया है, आओ लौट कर, और इस महीने में हम तुम्हें तुम्हारे रुख को सीधा करें। इस महीने में जो हमसे दूर भटके जा रहे हो तो हम तुम्हें करीब लेकर आए, और दुनिया की जो फिक्र तुम पर गालिब आ गई है उसके बदले में आखिरत की फिक्र तुम्हारे ऊपर गालिब करे। इस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना अता फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिन हुदा वल फ़ुरक़ान। और ये फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तक़वा पैदा हो जाए तुम्हारे, ये दुनिया की फिक्र में लगकर तुम्हारा तकवा कमजोर हो गया है, मांद पड़ गया है, और आखिरत की फिक्र मगलूब हो गई है। हम तुम्हें इस महीने के अंदर अपने पास बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ताकि तुम जो दूर चले गए हो हमसे तो हमारे करीब आ जाओ। अल्लाह, ये है इसका, इस महीने का मकसूद। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि तरबियत दी जा रही है, पहले जब्ते नफ्स की, जब्ते नफ्स की के रोजा रखो, बहुत खा लिया पी लिया 11 महीने, और बहुत तुम्हारे दिलो दिमाग के ऊपर वो खाने पीने सवार रहे, अब हमारी खातिर दिन इस तरह गुजारो कि न खाओ न पियो। और जब इस तरह गुजारोगे कि अपने नफ्स में हालांकि तकाजा पैदा हो रहा है, खाने का भी दिल चाह रहा है, प्यास भी लग रही है, लेकिन हमारी खातिर से तुम खाने को छोड़े हुए होगे, हमारी खातिर से पानी को छोड़े हुए होगे, तो क्या होगा कि असौमुली वाना अजरी भी, यह रोजा तुम खालिस मेरे वास्ते रख रहे हो, इसमें रियाकारी का इस्तेमाल नहीं, इसमें दिखावे का इस्तेमाल नहीं, ये खालिस मेरे लिए रख रहे हो, तो वह आना अज्जी भी, तो अब मैं ही जजा दूंगा। क्या जवाब दें, यानी कोई जजा बताई नहीं, क्या जजा दूंगा, और चीजों की बता दी कि फला अमल का ये सवाब, फला अमल का ये सवाब, सदके का ये सवाब 600 गुना ज्यादा, 700 गुना ज्यादा, यहां कुछ नहीं बताया, आना अज्जी भी मैं दूंगा, अपने पास से दूंगा। तो ये इसकी अजमत, उस जजा की अजमत बयान फरमा दी इस जुमले ने कि मैं दूंगा, मेरा है, मेरे है, मेरे लिए है, मैं ही दूंगा। क्या दूंगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही जाने क्या देंगे, لیکن ظاہری طور پر یہ بات ہے کہ جب میرے لیے ہے اور میں جزا دوں گا تو اپنے قرب کی دولت عطا فرما دوں گا تمہیں، اپنے ساتھ تعلق کی دولت عطا فرما دوں گا، یہ اس کا اجر تمہیں یہاں ملے گا، یہی دنیا میں ملے گا، کہ اس کی وجہ سے جتنا بندہ اللہ جل جلالہ کی خاطر اپنے نفس کو ضبط کرتا ہے، نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نسبت سے اس کے ساتھ تعلق میں اضافہ، اس کو تعلق میں اللہ میں اضافہ فرماتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی قدس صلی اللہ تعالیٰ سر فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرو، اور کسی گناہ سے بچنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچو. اسی سے تعلق میں اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے. تو یہ تعلق میں اللہ پیدا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانے کو چھوڑا ہوا ہے، پینے کو چھوڑا ہوا ہے، خواہشات کو چھوڑا ہوا ہے، تو ضبط نفس کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اپنا قرب بھی عطا فرما رہے ہیں. اور ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سر رہو، کہ رات کو تراوی، حضرت فرماتے کیا تراوی، کیا سمجھو گے تراوی کیا ہے؟ تراوی میں کیا ہے کہ 20 رکعتیں، تو 20 رکعتوں میں کتنے سجدے؟ 40 سجدے ہے نا. اور سجدہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالی فی السجود، کہ بندہ اپنے اللہ سے کسی بھی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ میں نے بھی بڑے پیار سے کہا ہے کہ سجدہ کر لو اور میرے پاس آ جاؤ، سورہ اقرا کی آخری آیت، سجدہ کر لو اور میرے پاس آ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا کوئی بھی ذریعہ اتنا بڑا قوی نہیں ہے جتنا سجدہ ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تراوی میں 40 سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ عطا فرما دیے. کیا مانا؟ کہ 40 مقامات قرب تمہیں عطا فرما دیے، ہر روز 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرما دیے. تو ایک طرف روزے سے قرب بڑھ رہا ہے، ایک طرف قیام رمضان سے، تراویح سے 40 مقامات قرب میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ قریب لایا جا رہا ہے بندہ. پھر فرمایا کہ یہ شہر صبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کے مہینے کا کیا مطلب؟ ایک تو صبر یہی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے نہیں کھا رہے، پیاس لگ رہی ہے نہیں کھا رہے، صبر کر رہے ہیں. نہیں، اس سے زیادہ وسیع ہے کہ اور بھی جو خواہشات بری بری دل میں پیدا ہو رہی ہوں، ان کو، ان کے اوپر صبر کرو، ان کے تقاضوں پر صبر کرو، زبان کو روکو، زبان سے غلط بات نہ نکلے، زبان سے غلط بات نہ نکلے. یہاں تک فرمایا کہ کوئی لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، توتکار کرنے لگے، تو کیا فرمایا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑتا، لڑ نہیں سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب دوسرا شخص برا بھلا کہہ رہا ہے اور گالی گلوچ پر آمادہ ہے، لڑنے پر آمادہ ہے، تو طبیعت کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا منہ نوچ لوں اور جتنی گالیاں یہ دے رہا ہے اس سے 10 گنی میں دے دوں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، روک لو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لو، غصے کو پی جاؤ اور کہو کہ میں تو روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ ضبط نفس، اور کہ زبان سے کوئی کلمہ، عام حالات میں بھی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا حرام ہے، लेकिन इस रमजान के महीने में जब अल्लाह ताला ने इसको शहरु सब्र करार दिया तो इसमें गुनाह की शनाअत और बढ़ जाती है। इसमें अगर झूठ का कलिमा बोले आदमी तो अल्लाह बचाए तो रोजा जायज काम से तो रख लिया, यानी खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन जो नाजायज काम पहले से हराम थे, झूठ हराम था, गीबत हराम थी, वो करने लगा तो क्या हासिल। इसलिए फरमाया कि उसका खास तौर से एहतमाम करो। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे तो वो एक दो आदमी थे एक दूसरे की हजामत कर रहा था, ये जो पछने लगवाए जाते हैं वो हजामत कर रहा था और दोनों बातें कर रहे थे और बातों में गीबत कर रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, ये जिन जो पछना लगा रहा है ये भी और जिसके पछने लगाए जा रहे हैं वो भी, इन दोनों का रोजा तो टूट गया। इसका मतलब बात फुकाहा ने तो यह करार दिया कि कोई हजामत से रोजा टूट जाता है, लेकिन अक्सर फुकाहा ये कहते हैं कि ये मुराद नहीं है, रोजा तो नहीं टूटा, लेकिन मतलब यह कि रोजे का जो मकसद था, रोजे का जो सवाब था, जो उसका अजर था कि आदमी अपने नफ्स के ऊपर जब्त करता, वो इन्होंने फौत कर दिया। ये अफ्तर हाजिम वल माजूम के माना यह है कि गीबत करके रोजे का सवाब खत्म कर दिया। तो इसके जरिए अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलो करम से जब्त नफ्स की भी तरबियत फरमा रहे हैं, शहरु सब्र, और इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शहरुल मुआसात, गमखारी का महीना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के जज्बात को फरोग देने का महीना, कि इसमें जितना हो सके दूसरों की हमदर्दी से काम लिया जाए। हदीस में फरमाया कि अपने नौकर से, अपने गुलाम से, उस जमाने में गुलाम हुआ करते थे, वही हुक्म नौकर का भी है कि रमजान में उसका बोझ हल्का कर, उसके ऊपर ज्यादा ऐसी मशक्कत न डालो कि जो उसके लिए दुश्वारी का सबब बने, और अगर कोई दुश्वार काम तुमने उसको बताया है तो खुद उसकी मदद कर। शहरुल मुआसात है ये, अपने माहौल में मिलने जुलने वालों में जरूरतमंद लोगों का ख्याल करके उनकी जितनी हो सके मदद कर दो, शहरुल मुआसात है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है कि आप रमजान के अंदर सबसे ज्यादा, यूं तो सारे महीनों में आपकी सखावत के दरिया बहते थे, लेकिन फरमाया कि रमजान के अंदर आप इतने सखी होते थे कि जैसे जैसे चलती हुई हवा, यानी ऐसी हवा जैसे हर इंसान को सैराब करती है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात जो है सब लोगों को सैराब फरमाती है। तो इसका महीना शहरुल मुआसात, ये सारे अमल करवा कर दर हकीकत जो हम दूर चले गए थे अल्लाह तबारक व ताला की इनाबत से दूर चले गए थे और आखिरत की फिक्र से दूर चले गए थे, उसको करीब लाना मंजूर है इस सारे मजमूए से। जब ये बात है तो भाई फिर इस रमजान की तैयारी और इसका इस्तकबाल ये है कि इसको यूं समझो कि हमारी ओवरहॉलिंग का महीना आ रहा है। जैसे कोई मशीन होती है ना, वो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर मैल कुचैल चढ़ जाता है और फिर उसको अक्सर नौ उसको साफ किया जाता है, सुथरा किया जाता है, उसके पुर्जों को कारामत बनाया जाता है। इस तरह हमारे ऊपर ये गर्द गुबार चढ़ गया है दुनिया का 11 महीने में, तो इस 12वें महीने में अल्लाह तबारक व ताला ने जो हमें हमारे लिए भेजा है अपने फजल व करम से, ये हमारी ओवरहॉलिंग का महीना है, हमें पाक साफ करने का महीना है। तो अब जरा अपनी रुख और अपनी सोच का रुख कम अज कम इस महीने के अंदर, कम अज कम इस महीने के अंदर अपनी सोच का रुख आखिरत की तरफ कर लो, अल्लाह तबारक व ताला की रुजू की तरफ कर लो, ताकि इसमें वाकईतन ओवरहॉलिंग हो जाए, पाक साफ हो जाओ, और तुम्हारी जो अल्लाह ताला से दूरी हो गई है वो कुर्ब में बदल जाए। वो कैसे होगा? वो ये कि रमजान के महीने में कोशिश इस बात की जाए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त असल इबादत की तरफ, जिसके लिए हम पैदा किए गए थे, ज्यादा से ज्यादा वक्त असल इबादत में सर्व किया जाए। मैंने आज कह रहा एक असल इबादत है, बराह रास्त इबादत है, एक बिलवास्ता इबादत है। बिलवास्ता इबादतें करते करते तो 11 महीने गुजर गए, लेकिन इस महीने के अंदर बराह रास्त इबादतों की तरफ तवज्जो ज्यादा हो, ज्यादा वक्त गुजरे नफली इबादतों में, उन इबादतों में जो फर्ज नहीं लेकिन नफली है, अल्लाह तबारक व तआला के तकर्रुब का जरिया है, उनका एहतमाम इसमें आम दिनों से बढ़कर किया जाए। उसके लिए जरूरत है कि पहले से अपना नज्म औकात ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसी तदबीर की जाए कि इसमें जो हमारी मसरूफियात हैं दुनिया की वो मसरूफियात कम हो और आखिरत वाली मसरूफियात बढ़े। इसका पहले से अभी है जो अंजाम बाकी है तो आदमी उसके हिसाब से अपना, जैसे कोई आदमी कहीं सफर पे जाता है तो इंतजाम करके जाता है, भाई मेरे पीछे घर वालों का क्या होगा किस तरह, तो उसी तरीके से इस आने वाले महीने के लिए जो अपने दुनियावी काम हैं उनको मुख्तसर जितना किया जा सके और उसको दूसरों के हवाले जितना किया जा सके वो करके, और इबादत के जो खालिस अफ़ाल हैं उनकी तरफ अपने आप को ज्यादा मुतवज्जह किया जाए। चुनाचे इस महीने के अंदर अलावा फराइज के, अलावा सुनन मुअक्कदा के जिनमें तरावीह भी दाखिल है, नवाफिल का, नफली इबादतों का एहतमाम ज्यादा हो। आम दिनों में तहज्जुद का अगर आखिर शब में मौका नहीं मिलता या तौफीक नहीं होती तो कम से कम इस महीने में हो जाए, सहरी से इतना पहले उठ जाए कि 8-10 रकतें तहज्जुद की इत्मीनान के साथ अदा हो जाए। आम दिनों में इशराक की और अवाबीन की और चाश की तौफीक नहीं होती तो इन दिनों के अंदर एहतमाम हो जाए कि भाई इन दिनों के अंदर इन सब नवाफिल का इंतजाम किया जाएगा, एहतमाम किया जाएगा। और इसके अलावा भी जो अवाबीन मसलन जितनी भी है मैंने नाम लिए, अवाबीन की जो है आमतौर से 6 रकतें होती हैं लेकिन हदीस में 20 रकतों का तक आया, 20 रकतों तक भी पढ़ी जा सकती है। और इसी तरह इशराक और चाश की नमाजों के अंदर भी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, वो जितने ज्यादा पढ़ी जा सकती हूं। और कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम की तिलावत को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस रमजान मुबारक के अंदर, ये बहुत अहम इबादत है रमजान की खास तौर पर, जिसकी बड़ी अजीम बरकात है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दौर फरमाया करते थे कुरान करीम का, तो उसकी तिलावत जितनी हो सके। और इस तिलावत में बात यह भी कि भाई तिलावत तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को कुछ ना कुछ तौफीक हो जाती है, लेकिन तिलावत वो सही तरीके से हो। बहुत से लोग तिलावत तो करते हैं लेकिन हुरूफ की अदायगी सही नहीं। अब हुरूफ की अदायगी का सही करना हर मुसलमान के जिम्मे फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन यानी जो हर्फ जिस तरह निकलना चाहिए उसी तरह निकाला जाए, इसमें बड़ी कोताही है। अच्छे काजो पढ़ने लिखे और बालोकात दरसे निजामी के फाजिलीन भी वो कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान करीम को उसके सही तजवीद के साथ पढ़ने का एहतमाम नहीं है, तो इस जमाने में इसका एहतमाम करें, पहले से एहतमाम करें कि वो हुरूफ हमारे सही अदा हों, तजवीद के मुताबिक अदा हों। और एक بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں. ہمارے بہت سے حضرات تو یہ کرتے تھے کہ تلاوت کی جو مقدار ہے عام دنوں میں جتنی کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں, 10 گنی 20 گنی. بہت سے وہ ہیں جو قرآن کریم ایک رات ایک مرت ایک قرآن مجید روزانہ ختم کرتے تھے. لیکن بعض بزرگوں کا اور مزاج تھا. ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ مذکور ہے کہ وہ تلاوت تو جتنی معمول تھی معمول کا کی روزانہ کرتے تھے اتنی ہی کرتے تھے حضرت, لیکن باقی وقت جو ہے قرآن کریم کے تدبر میں خرچ فرماتے تھے. یعنی اس کی تفسیر, اس کے معانی, اس کے حقائق, اس کے معارف, اس میں غور و فکر زیادہ فرماتے تھے, اور اسی کے نتیجے میں مشکلات القرآن وجود میں آ گئی. تو جو اہل علم ہے یا دوسرے عام مسلمان بھی تلاوت کا بھی اہتمام کریں, اور دنوں میں اگر قرآن کریم کی تفسیر اس کا مطلب سمجھنے کی کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم اس رمضان کے مہینے میں کچھ وقت نکال لیں اس کام کے لیے کہ تلاوت بھی کریں اور کچھ وقت قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ اور مستند تفسیر کے مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ مستند تفاسیر موجود ہے, معرفت القرآن ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آسان تفسیر ہم سب کے لیے مہیا فرما رکھی ہے, اس کو اگر مطالعہ ہو جائے اس رمضان کے اندر پورے قرآن کریم کا اس کی مدد سے ہو جائے, یا اور کوئی مختصر تفسیر کے ذریعے ہو جائے. میری بھی ایک مختصر سی تفسیر توضیح القرآن کے نام سے چھپی ہوئی ہے, اگر بڑی تفسیر دیکھنے کا پورے استیعاب کے ساتھ موقع نہ ہو تو اس کا اہتمام کر لیں, کیونکہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو ڈھنگ سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قرب کا اس سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس واسطے اس سے جتنا قرب حاصل ہوگا وہ کسی اور سے نہیں. تو ان تمام مجموعے کاموں سے اور سب سے بڑھ کر گناہوں سے پرہیز, آنکھوں کی حفاظت, کان کی حفاظت, زبان کی حفاظت, طے کر لیا جائے کہ یہ آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی اس مہینے کے, اور یہ کان غلط بات نہیں سنیں گے, زبان سے غلط کلمہ نہیں نکلے گا, اس اہتمام کے ساتھ پہلے سے تیاری کی جائے اور اس اہتمام کے ساتھ مہینہ گزارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو مقصد ہے اس پورے مہینے کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہو. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ, رمضان سلامتی سے گزر جائے تو انشاءاللہ پورا سال سلامتی سے گزرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ باتیں میں نے کہہ بھی دی آپ نے سن بھی لی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا, اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس, اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا حمل المستجيرين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, يا أرحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا أمان المستجيرين, يا مجيب دعوة المضطرين, اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ، اے اللہ ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ کھلے اور چھپے ہر گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دیجئے، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، ہب لنا ما لا ينقصک واغفر لنا ما لا يضرک واغفر لنا ما لا يضرک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم اپنی پوری امت کی طرف سے اے اللہ معافی مانگتے ہیں، اپنے رحمت سے ہمیں ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم اپنے قہر اور غضب کو ہم سے ہٹا لے، یا اللہ اپنے رحمت سے قہر و غضب سے ہمیں آپ کی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے قہر و غضب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہم لا منجا ولا منجا من کا الا الیک، اللہم لک العتبہ حتی ترضا، اللہم لک العتبہ حتی ترضا، اللہم لک العتبہ حتی ترضا. یا اللہ راضی ہو جائیے، اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم خطا کار ہیں اے اللہ، لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری تمام امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے روا فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ہر طرح کے فتنوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے اے اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کا حوصلہ عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے طاعات کا حوصلہ عطا فرمائے، طاعات کا شوق عطا فرما دے، اس کی امنگ عطا فرما دے. یا اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوقات عزیز کو اے اللہ صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے جس مقصد سے یہ مہینہ مقرر فرمایا ہے، یا اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمۃ. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا، اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدرسہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھر صاحب مدرسہ کی ہفتہ وار اصلاحی مجالس براہ راست بیان بھی، اور دیگر علمائے پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل، یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی
घर बैठे आसानी से इस्तफादा हासिल किया जा सकता है।